इल्म का मुझको शौक था कर खुदा इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा। इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। खुश नसीब हुज्जाजे किराम मक्का मुकर्रमा की पाक सरजमीन पर मौजूद है। वो सरजमीन वो मक्का मुकर्रमा जो अजमतों वाला शानों वाला बरकतों वाला महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर विलादत हजरत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम जहाँ पर तशरीफ़ लाए खाना काबा तामीर किया हजरत इस्माईल अलैहि सलातु वस्सलाम जिस सरजमीन पर बचपन में शीर खारगी में लेटे उनके दम कदम से आब जमजम का चश्मा जारी हुआ वो शहर कि जिसका नाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया और जिसमें मौजूद खूबसूरत घर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। इरशाद हुआ इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकं व हुदल लिल आलमीन। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया जरूर मक्का मुकर्रमा में है, मक्के में है, बरकत वाला है और सारे जहानों के लिए हिदायत है। वो कैसा पाक घर है? फरमाया फीही आयातुम बशिनात, उसमें रोशन निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम के खड़े होने की जगह, वो जगह वो पत्थर जिस पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया, रब के प्यारे घर को, मुसलमानों के किबले और काबे को तामीर किया। अल्लाह अकबर, जिसकी तामीर का तस्किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल उस घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे, उस घर की बुनियादों की तामीर कर रहे थे और जमीन के नीचे से वो बुनियादें ऊपर की तरफ जा रही थी। रब फरमाता है वो वक्त याद करो कि जब इन दोनों हस्तियों ने खाना काबा को तामीर किया और तामीर के साथ रब की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, ये अमल, ये हमारी नेकी हमारी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। खाना काबा और मक्का मुकर्रमा की सरजमीन वो मुकद्दस जमीन है कि जिसके साथ ईमानी यादें वाबस्ता है, जिसके साथ मुसलमानों के ईमान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हाँ वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम का तामीर काबा हो या तामीर काबा के बाद जो रब ने उन्हें हुक्म दिया अंतहिरा बैतिया लित्तौइफीना वलआकिफीना वर्रुकअस सुजूद, हमने इब्राहिम व इस्माईल को ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को खूब पाक रखना, किनके लिए? लित्तौइफीन वलआकिफीन वर्रुकअस सुजूद, तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए। सुबहान अल्लाह, पहले खुदा ने तामीर काबा का हुक्म दिया, फिर उस घर को पाक साफ रखने का हुक्म दिया और साथ में इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम को फरमा दिया वह अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दो कि अल्लाह ने हज की इबादत लोगों पर मुकर्रर की है। सुबहान अल्लाह, और रब इस हज के बारे में फरमाता है वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो इस तक पहुंचने की इस्तेआत रखता, ताकत रखता, असबाब वसाइल रखता, तंदुरुस्ती रखता, तो फरमाए उसके ऊपर हज फर्ज है। हर मुसलमान के दिल में होता है कि काश कि मक्का मुकर्रमा की हाजिरी हो, खाना काबा की ज्यारतें हों, उसके अनवार से अपनी आंखों को रोशन करें, खाना काबा की ठंडक से अपने दिलों को सुरूर पहुंचाएं, उस पाक घर का तवाफ करें। वल यतवफु बिल बैत अल अतीक, उस कदीम घर का लोग जरूर तवाफ करें। व अतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए हज और उम्रे को मुकम्मल करो। तो ये जो हज की आयतें हैं, ये जो उम्रे की आयतें हैं, ये जो तवाफ की आयतें हैं, सुभान अल्लाह, ये जो सफा और मरवा के दरमियान सई है, इन्ना सफा वल मरवा ता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। तो जो हज या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि वो इनके दरमियान, सफा मरवा के दरमियान सई करे, सुभान अल्लाह। तो गोया ये सफा मरवा वो जिसका तस्किरा कुरान में, ये खाने काबा वो जिसका तस्किरा कुरान में, ये मकाम इब्राहिम वो जिसका तस्किरा कुरान में, ये सरजमीन मक्का लल्लदी बिबक्का ता मुबारकम वहुदल्लिल आलमीन, इस सरजमीन मक्का का तस्किरा कुरान, बल्कि इसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी कि ए मौला मैंने अपनी जुर्रियत को एक ऐसी जगह बसा दिया जो एक नाला है जहां पर कोई आबादी नहीं, बे आबो गया वो एक मैदान है, वो एक सहारा है, ए अल्लाह मैंने अपनी औलाद को वहां पर बसा दिया है, ए अल्लाह तू उन पे करम करना, लोगों के दिलों को उनकी तरफ मुतवज्जे कर देना, दुनिया जहान के फल वहां पर उन्हें अता फरमा देना। तो जब बंदा उस पाक शहर में जाता है तो ये सारी चीजें उसके सामने होती हैं। फिर वहां पर मस्जिद हराम में बंदा एक नमाज पढ़ता है, एक लाख नमाजों का सवाब अता फरमाता है अल्लाह, एक लाख नमाजों का। कुर्बान जाइए इस करम पे, इस फजल पे, कि कहां एक लाख रकअत पढ़े तब जाके एक लाख रकअत का सवाब मिलेगा, और कहां इस प्यारी मस्जिद हराम शरीफ में बंदा दो रकअत पढ़े तो दो लाख रकअतें पढ़ने का सवाब मिलेगा, एक लाख गुना सवाब बढ़ जाएगा। वहां पर एक मरतबा कुरान मजीद जिसने खत्म कर लिया, सुभान अल्लाह, एक लाख मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। और ये तो सवाब का मामला है कि जो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। फिर इसके अलावा जो बरकतें हैं, जो दिल पर एक रूहानियत उतरती है उस जगह पे, उसका तो कहना ही क्या है, उसका तो जवाब ही नहीं। हो सकता है कि कोई बंदा किसी दूसरी जगह पे मिसाल के तौर पे लाख रकतें पढ़ ले, लेकिन जो अनवारे काबा हैं, जो खाना काबा की बरकतें हैं, जो निगाहों के सामने खाना काबा का होना और फिर नमाज पढ़ना है, वो तो नहीं मिल सकता। तो होता क्या है कि एक शेख की जो अपनी कुछ खसूसियात होती हैं वो फिर नहीं मिलती। जैसे रमजान मुबारक के रोजे के बारे में फरमाया गया कि अगर रमजान का किसी का रोजा छूट जाए तो जिंदगी भर के रोजे उस एक रोजे के बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी का रोजा छूट जाए, वो छोड़ दे और उसके बाद वो चाहे कि पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे ताकि वो रमजान वाले रोजे का सवाब और बरकतें मिल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही मामला खाना काबा का है, मस्जिद हराम का है। हाजी जाता है, तवाफ करता है, ज्यारतें करता है, उमरा करता है, वहां से वो मीना को जाता है, मीना की वादियों में ठहरता है और वहां पर अल्लाह को याद करता है, नमाजें पढ़ता है, फिर वहां से अराफात को जाता है, अराफात की प्यारी जमीन के ऊपर जहां हज होता है, जहां अपने मखसूस औकात में अपनी शराइत के साथ जो दाखिल हो गया उसका हज हो गया, खुदा की बारगाह में हाजी हो गया। इतना बड़ा सवाब का अमल, इतनी बड़ी इबादत उसकी अदा हो गई एक मैदान में कदम रखने से। आखिर कुछ तो होगा उस मैदान में, रब ने उस मैदान को कुछ तो ऐसी खसूसियात अता फरमाई। फिर वहां पर जो वहां उस सरजमीन के अपने जो अनवार, फिर वहां पर सारा दिन जो रब की बारगाह में दुआएं मांगना है, जो वहां पर तौबा इस्तिगफार पढ़ना है, जो वहां पर रोना है, جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزوئیں اور اپنی دل کی تمنائیں پیش کرنی ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد مزدلفہ کو آتے ہیں. مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. کیسی سہانی رات ہوتی ہے, کیسی پرنور رات ہوتی ہے جب حاجی کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے حاجی بنا دیا, رب نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے حج کی سعادت عطا فرما دی. میں وہاں پر حقوق اللہ معاف کروا کے آ گیا, میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف کروا کے آ گیا. اور یہ مزدلفہ کا میدان وہ ہے کہ جہاں پر حقوق العباد معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر یہاں اس کی رات عبادت میں گزرتی ہے. پھر یہاں سے وہ دوبارہ منا کو جاتا ہے, پھر رمی جمارات کرتا ہے, پھر وہ قربانی کرتا ہے, سنت ابراہیمی کو یاد کرتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق یا قصر کرواتا ہے, اس کے بعد اس کا احرام جو ہے وہ کھل جاتا ہے, پھر وہ طواف زیارہ کرتا ہے. سبحان اللہ. طواف زیارہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر بعض صورتوں میں سعی کرنی ہوتی, وہ سعی کرتا ہے. پھر جو باہر سے آیا ہے آفاقی ہے, وہ واپسی کے لیے طواف رخصت کرتا ہے. پھر بندہ جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہتا ہے, جتنے دن مکہ مکرمہ میں رہتا ہے, یقین کیجئے کہ اگر صاحب دل ہو, غافل نہ ہو, کاہل نہ ہو, دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا نہ ہو, مکہ مکرمہ کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہو, حج کے ایام کی عظمت کو جانتا ہو, اور وہاں حاضری کی جو توفیق ملی ہے اس توفیق کو سمجھتا ہو کہ رب نے کروڑوں بلکہ اربوں مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اسے اپنے گھر بلایا ہے, اگر بندہ اس کو سمجھتا ہو تو یقین کیجئے کہ اس کا سر سجدے سے نہ اٹھے کہ خدا نے کیسا اس کے اوپر کرم کیا ہے. تو جو غافل نہیں ہے, جو کاہل نہیں ہے, جو بندگی کا ذوق رکھنے والا ہے, جو عبادت کا شوق رکھنے والا ہے, جسے نمازوں میں لذت ملتی ہے, تلاوت قرآن جس کے دل کو خوش کرتی ہے, خانہ کعبہ کی زیارت سے جس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, طواف کرنے سے جسے روح کا سرور ملتا ہے, وہ اپنا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. یا تو وہ عبادت میں ہے, اور اگر وہ سونے کے لیے بھی جاتا ہے تو اس لیے کہ سو کے اٹھیں گے تو دوبارہ پھر یہاں پر آ جائیں گے. اور یہ حاجیوں کی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ کہ وہ سونے کے لیے جاتے ہیں, تو جب سونے سے پہلے پلان یہ ہوتا ہے کہ بھی سو کے اٹھیں گے نا تو فوری طور پہ پھر جانا ہے, جا کے طواف کرنا ہے, پہلے جا کے پہلے یہ کام کرنا ہے. تو گویا جو سونا ہے وہ بھی یاد خدا میں, جو جاگنا ہے وہ بھی یاد خدا میں. یہ ہے حج کے ایام, یہ ہے وہ پرنور ایام, برکتوں والے ایام. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ سعادت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بار بار سعادت عطا فرمائے کہ ہم ان جگہوں پہ جائیں جہاں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے تھے, کہ جن کی وجہ سے رب نے اس شہر پاک کی قسم قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی, لا اقسم بہاد البلد وانت حل بہاد البلد, مجھے اس شہر کی قسم اس حال میں کہ اے محبوب تم اس میں جلوہ فرما, مجھے شہر کی قسم. سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو جس شہر کی قسم رب نے بیان فرمائی, اور جس شہر میں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اس دنیا میں تشریف لائے, حضرت آمینہ کے گھر میں ان کے آنگن میں تشریف لائے, اس دنیا کو روشن کیا, جہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا, جہاں سرکار نے بھی حج کیا, جہاں طواف کیا, جہاں عمرہ کیا, جہاں نمازیں پڑھی, جہاں دین کی دعوت دی, جہاں پر اسلام کی تبلیغ فرمائی, جہاں پر راہ خدا میں مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کیا, ان پاک گلیوں کی زیارت, ان پیاری گلیوں کی زیارت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ حضور, حج کسی پر فرض ہے لیکن اس کو جاب سے چھٹی نہیں مل رہی, تو اب وہ کیا کرے؟
حج جب فرض ہو جائے تو اس کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے, اور جاب سے چھٹی ملنا یہ کوئی عذر نہیں ہے شرعی اعتبار سے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں نے عرض کی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو لہذا جس کے پاس اسباب موجود ہیں, یعنی زاد راہ, اخراجات موجود ہیں, اور صحت کے اعتبار سے تندرستی کی جو شرعی شرائط ہیں اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں تو اس کے لیے حج پر جانا فرض ہوتا ہے. اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور پھر بھی وہ نہ جائے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ چاہے ایسا بندہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اس پر بڑی سخت وعید ہے. جب حج فرض ہو جاتا ہے تو فوری طور پہ حج پہ جانا ضروری ہوتا ہے. اس میں تاخیر کرنا جو ہے یہ گناہ ہے, اور مسلسل تاخیر کرتے رہنا یہ تاخیر کرنے والا جو ہے یہ فاسق اور مردود شہادت ہو جاتا ہے. تو لہذا جاب جو ہے اسے عذر نہ بنایا جائے بلکہ لازمی طور پہ جو ہے وہ حج کا سفر کرے.
ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سے مکروہات تحریمہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز جو ہے وہ واجب الادا ہوتی ہے؟
یہ تو ایک پوری فہرست ہے, ایک پوری تفصیل ہے کہ مکروہ تحریمی کا اگر نماز میں ارتکاب ہوگا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی. تو نماز کے جتنے بھی مکروہ تحریمی ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے نماز اگر جان بوجھ کے کریں گے تو واجب الادا ہو جائے گی, اگر سہون ہوگی تو اکثر صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا. چند ایک مستثنیات ہیں, یعنی چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کا ارتکاب ہو گیا تو نماز میں یہ مکروہ تحریمی ضرور ہے, گناہ ضرور ہے, لیکن نماز واجب الادا نہیں ہوتی. اس کا اصول علماء کرام نے یہ بیان فرمایا, فقہ کرام نے, کہ وہ واجبات کہ جن کا تعلق اصل نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نماز سے ہٹ کر کسی چیز سے ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص جماعت میں شرکت کرتا ہے اور وہ نمازی سے جو ہے وہ کافی فاصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, جیسے ایک میٹر کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا. اب یہ جو قطع صف ہے کہ درمیان میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اتنی جگہ چھوڑ کر جو نماز پڑھی, یہ جو قطع صف ہے, بلکہ اس سے کم بھی قطع صف تو ہو جاتی ہے, تو قطع صف جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے, لیکن یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات جماعت میں سے ہے. تو اب اس کی وجہ سے نماز واجب الادا نہیں ہوتی.
عامر عوان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے یا نفلی عبادت کرنا؟
ماں باپ کی خدمت کرنا اور نفلی عبادت کرنا دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے, اور ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر نفل بھی پڑھتا ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے تو دونوں ہی ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ نفل پڑھنے لگے گا تو ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی, ماں باپ کی خدمت کرے گا تو نفل نہیں پڑھ سکتا, ایسا تو ہے نہیں. تو یہ دونوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب دونوں ایک وقت میں ہو نہیں سکتے یا ایک بندہ کر نہیں سکتا. وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. کرنا یہ چاہیے کہ جو ماں باپ کی خدمت ہے اس کے اپنے تقاضے پورے کیے جائیں, اور اس سے ہٹ کر جو کام ہیں ان کے اپنے تقاضے پورے کیے جائیں. اچھا, پھر بہت سے نفلی کام ایسے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے دوران بھی آپ کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے باپ کے پاؤں دباتا ہے. والد کے پاؤں دبانا یا ماں کے پاؤں دبانا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے, خدمت ہے, حسن سلوک ہے, اور ماں باپ سے حسن سلوک کے اوپر جنت کی بشارت ہے. ماں باپ کا دل خوش کرنا انتہائی عظیم ثواب اور عبادت کا کام ہے. تو اب اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا رہا ہے اور اس وقت میں اگر وہ تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے, درود شریف پڑھتا رہتا ہے, تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہے تو کیا اس کے اندر کیا ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی اگر وہ پاؤں دبائے گا تو اس کی زبان نہیں چلے گی, یا زبان چلائے گا تو پاؤں نہیں دبا سکتا, تو پاؤں بھی دبا سکتا ہے زبان نہیں چلا سکتا ہے, تو دونوں کام ہی ہو سکتے. تو یہ بیسیکلی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جن کا آپس میں تقابل ہو. ہاں, کوئی ایسی خاص سچویشن ہے کہ جہاں پر ایک طرف ماں باپ کی خدمت ہے اور دوسری طرف نفل ہیں, تو وہاں پر اصولی اعتبار سے جو ماں باپ کی خدمت ہے وہ مقدم ہے, وہ بڑا ثواب کا کام ہے, وہ بڑی عبادت ہے. لیکن یہ ہے ایک اصولی بات. ہوتا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اصولوں سے خود استدلال کر کے اپنی صورتوں پر اسے لگانا شروع کر دے تو اس میں اکثر و بیشتر غلطی کا شکار ہوتی ہے. لہذا ایسی جگہ پہ یہ کرنا چاہیے کہ کسی محقق مستند عالم دین کے سامنے اپنی صورت بیان کر کے اس کا جواب لیا جائے, تو پھر ایکچوئل آپ کو وہ جواب ملے گا کہ اس صورت میں کیا حکم ہے. لیکن وہ میں نے عرض کر دیا کہ بظاہر ان میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی تقابل نہیں ہے, اور بالفرض اگر کسی جگہ دونوں چیزیں آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو پھر ماں باپ کی خدمت کا جو مقام و مرتبہ اور ثواب ہے وہ زیادہ ہے.
محمد صوبان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے اس بارے میں رہنمائی درکار ہے کہ انشاء اللہ اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ رومن میں لکھ سکتے ہیں؟
السلام علیکم اور انشاء اللہ, انہیں رومن میں لکھنے کے حوالے سے طریقہ کار یہ ہے, वैसे तो उलमा का इसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलमा मुतलकन इसकी इजाज़त देते हैं और वो भी हमारे अहले सुन्नत के उलमा हैं, और बाज़ उलमा इससे मना करते हैं और वो हमारे अकाबिरीन हैं। और दारुल फ़िका अहले सुन्नत की तरफ से भी इस हवाले से यही जवाब है कि जिन हुरूफ का मुतबादिल रोमन के अंदर यूं नहीं होता कि उसका इल्तिज़ाम किया जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर उस रोमन से एतराज़ करना चाहिए। जैसे अगर लिखा जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह में कोई ऐसा हर्फ नहीं है कि जिसका मखरज अदा करने में रोमन के अंदर कोई दुश्वारी हो या इल्तिबास बनता हो, तो लिहाजा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये तो रोमन में लिख सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है अस्सलामु अलैकुम का, तो अस्सलामु अलैकुम जो है इसमें क्या है, इसमें है आइन। अब जब उसको ALAIKUM इस तरह करके लिखते हैं या इसे मिलता जुलता कुछ लिखते हैं, तो अब ए को अलिफ भी पढ़ सकते हैं, आइन भी पढ़ सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम अलैकुम, तो अलैकुम और अलैकुम दोनों हो सकते हैं। तो जहां पर रोमन के अंदर इश्तिबा और इल्तिबास है वहां पर उससे बचना चाहिए। हाँ, कुरान मजीद की जो आयात होती है उन्हें रोमन में लिखना जायज नहीं है। कुरान पाक के अहकाम जो है वो आम जो जुमले होते हैं इनसे बिल्कुल जुदा होते हैं। कुरान पाक के अंदर हुक्म यह है कि रस्म उस्मानी जिसे कहा जाता है, जिसपे हमारे यहाँ कुरान मजीद लिखे हुए मौजूद हैं, जो अरबी स्टाइल में भी हैं और ख़ास अरबी की बहुत सी चीज़ों की रियायत करते हुए भी हैं, रस्म की यानी लिखने के तरीकों की रियायत करते हुए हैं, तो कुरान पाक के लिए उसकी रियायत करना यानी उसके मुताबिक लिखना ये वाजिब है। लिहाजा कुरान पाक को रोमन में बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसके अलावा जो मुकद्दस अल्फाज हैं उसमें जहाँ पर मखारिज में कोई इल्तिबास और इश्तबा नहीं है वहाँ पर उन्हें जो है वो लिख सकते हैं, और जहाँ पर मखारिज में इल्तिबास होता है वहाँ पर उनसे बचा जाए।
असमतुल्लाह भैया ये सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी मजार पर जाके मन्नत मानी थी लेकिन अब याद नहीं है क्या मन्नत मानी थी, तो अब बंदे को क्या करना चाहिए?
मन्नत मानी थी और मन्नत का ये याद नहीं कि क्या मन्नत मानी थी, तो ऐसी मन्नत जो है वो शरीय एतबार से उसके ऊपर जो है वो, अगर तो उसकी नौयत उसको समझ आती है कि जैसे रोजे की मन्नत मानी थी तो रोजा ही रख ले, आप कितनी मन्नत मानी थी नहीं पता तो एक तो रोजा रखे, नफलों की मन्नत मानी थी तो दो नफल पढ़ ले, सदके की मन्नत मानी थी तो सदका फितर की मिकदार जो है वो दे दे, ताकि उसको किसी ना किसी एतबार से अपनी जो है वो मन्नत पूरी करने का एक सिद्क और एक जो है तसल्ली हो जाए। वरना क्या होता है कि मन्नत मान के जब पूरी ना की जाए तो बंदा अक्सर सारी जिंदगी तश्वीश का ही शिकार रहता है, यार पता नहीं मेरे साथ जो ये हुआ है ना ये वो जो मन्नत नहीं पूरी की थी उसकी वजह से हुआ, तो इसलिए चाहिए ये कि किसी ना किसी अंदाज के अंदर उस मन्नत की नौइयत को सोचकर उसे पूरा कर ले।
एक सवाल यह है कि दरिया या खेतों में गोश्त और अंडे वगैरह फेंकना कैसा, अक्सर लोग आमिलों के कहने पर इस तरह ये सदका करते हैं।
अंडे फेंकना जो है ये तो ज़ाहरी तौर पे जायज नहीं समझ आता, क्योंकि अंडे जो है वो कोई नहीं खाता, अंडे ज़ाया ही होते हैं। गोश्त के बारे में ये है कि अगर वहाँ पर ऐसे जानवर मौजूद हैं जो गोश्त खा लेंगे तो ऐसी सूरत के अंदर तो वो गोश्त का डालना जो है वो दुरुस्त है, लेकिन इस तरह डालना या ऐसी जगह डालना कि जहाँ पर वो ज़ाया ही होंगे, जैसे कब्रिस्तान में किसी ऐसी जगह डाल के आ गए कि पता नहीं परिंदे खाएंगे या नहीं खाएंगे, कुछ जानवर आके खा ले, बिल्ली वगैरह खा लेंगे या नहीं खा लेंगे, तो अब असलन जाई होंगे, तो ये माल का ज़िया है, ये माल को बर्बाद करना है, ये नाजायज़ गुनाह है। और ऐसी जितनी भी सूरतें होती हैं हत्तल इम्कान उनमें इनसे बचना ही चाहिए, और करना ये चाहिए कि वो किसी गरीब मोहताज आदमी को दे दे, उनको देने में वो फायदा भी हासिल हो जाता है, सदके का सवाब भी मिल जाता है, सदका बलाओं को भी टालता है, तो ये सारे फायदे उसमें हासिल हो जाते हैं।
एक सवाल यह है कि अगर हमसे किसी का दिल दुखा और हम उनसे माफी मांग रहे हैं वो माफ ना करे तो फिर क्या करें?
किसी का दिल दुखाया और अब उससे माफी मांगते हैं और वो माफ नहीं करता तो अब क्या करें? उमूमी जो सवाल है उसके अतबार से तो जवाब ये है कि जब किसी से माफी मांग ली और माफ़ी जिस तरह मांगनी चाहिए थी वैसे मांग ली, तो फिर तो जो है वो अब अगर सामने वाला माफ़ नहीं करता तो ये उसका फेल है। ये अपनी हद तक जितनी कोशिश कर सकता था इसने कर ली, तो अल्लाह की बारगाह में ये बरी हो जाएगा कि अल्लाह ताला इसकी हालत को जानता है, इसके अमल को जानता है कि इसने अपनी हद तक कोशिश कर ली। ये तो है एक उमूमी जवाब। दूसरी बात यह है कि कहने की हद तक तो ये कह दिया जाता है कि जनाब मैंने फलां की दिलाजारी की थी या किसी ने किसी की दिलाजारी की थी और अब उससे मुआफ़ी मांग रहा हूँ तो उसने मुआफ़ नहीं किया। लेकिन देखना ये होता है कि ये जो दिलाजारी करने वाला है इसने किया क्या और उसके बाद इसका मुआफ़ी मांगने के साथ रवैया क्या है। मुआफ़ी तो मांग रहा है लेकिन फिर मूजी का मूजी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं 100 मरतबा माफ़ी मांगते हैं लेकिन उसके साथ वही जो अजाब जान बने होते हैं वो बने ही होते, या वही सालाना जो है वो शब बारात को एक मैसेज जो है वायरल कर दिया माफ़ी का और अब उसके बाद समझे हुए हैं कि जनाब मैंने तो माफ़ी मांग ली थी सबसे, अब किसी ने नहीं मुआफ़ किया तो उसका मसला। तो इस तरह की जो माफ़ियाँ हैं ये माफ़ी नहीं होती। जब किसी को दुख पहुँचाया है तो फिर उसकी मुआफ़ी और तलाफ़ी ये उसी अंदाज में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ईजा पहुँचाते हुए तो दूसरे के दिल के अंदर खंजर चबो देते हैं, मुआफ़ी मांगते हुए समझ रहे होते हैं कि SORRY सॉरी बोल दिया तो चना मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा फिर उसके अंदर भी क्या होता है, मुआफ़ी मांगने के अंदर भी यानी कि अफराद के अतबार से फ़र्क होता है। अगर शौहर ने गलती की अब अगर वो मुआफ़ी मांगता है माजरत करता है तो चले मुआफ़ी दे दी जाए, वो देनी चाहिए। लेकिन ये जो मामला होता है कि बीवी को जो माफ करने का मामला है वो नहीं करना, मुंह वैसा ही बना के रखना, शक्ल वैसे ही बना के फिरते रहना, रवैया अंदाज वैसे का वैसा ही रखना, अजियत उसको वैसे ही पहुंचाते रहना और फिर उसके साथ ये है कि माफी भी वही मांगे। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं ऐसी वो चीजें होती कि जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई हम माफी मांगते हैं, माफी जो है ना वो दिल लेने देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब हम नहीं माफ करते। तो माफी किसी से मांगे तो उसके बाद वो जो उसका जीना हराम किया हुआ था, जो उसको तंग किया हुआ था, जो उसको ईजा पहुंचाई हुई थी वो भी खत्म करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जबान से माफी मांग रहे हैं और हाथों के अंदर छुरी लेके बैठे हुए। तो ये वाली माफी जो है ना, इस तरह की माफी पर अगर सामने वाला माफ नहीं कर रहा तो फिर वो ठीक है, फिर वो सही कर रहा है कि आपको माफ नहीं कर रहा कि ये तो माफी मांग ही नहीं रहे, ये तो मजाक कर रहे हैं उसके साथ। तो लिहाजा हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। नमाज छोड़ना भी हराम और मुसलमान का दिल दुखाना भी हराम, लेकिन नमाज छोड़ने के गुनाह पर अल्लाह ताला अपनी मर्जी से मुआफ़ फरमा दे ये उसकी शान है, लेकिन दिल दुखाने के ऊपर अल्लाह ताला खुद मुआफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा। तो हुकूक लिबाद का मामला बड़ा संगीन होता है, तो इसके ऊपर ज़रूर ज़रूर जो है वो गौर करे, ज़रूर इस पर तवज्जो दिया करे।
आबिद भाई का सवाल है कि बच्चे की पैदाइश के कितने दिन बाद उसका नाम रखना चाहिए।
बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन उसका नाम रखना चाहिए, उसका अकीका करना चाहिए, उसके बाल मुड़ने चाहिए, बालों के वजन के बराबर चांदी सदका करनी चाहिए, उसके सर के ऊपर ज़ाफ़रान लगाना चाहिए। तो ये सारे अहकाम हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के हवाले से फरमाए जाते हैं। अजान जो है वो फौरी तौर पर दी जाती है, बुट्टी जो दी जाती है वो फौरी तौर पर दी जाती है, बाकी नाम रखना, बाल काटना, अकीका करना, ये सारे काम जाइए 7वें दिन।
एक सवाल यह है कि क्या अजान के वक्त इस्लामी बहनों का सर पर दुपट्टा रखना जरूरी है।
अजान के वक्त सर पे दुपट्टा रखना इस्लामी बहनों के लिए एक अदब की सूरत है, उर्फन भी ये अदब और ताजीम में आता है, और फिर नामे इलाही सुनते हुए और उसका जवाब देते हुए, तो जब जबान से पढ़ना है तो उसके आदाब में से है कि खवातीन का सर जो है वो ढांपा हुआ हो। तो लिहाजा कोई वाजिब तो नहीं है लेकिन अदब का तकाजा है, हुस्न अदब है और बहुत अच्छी आदत है।
हारून भाई का सवाल है ये पूछने कि अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद कौन से हैं।
अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद तो एक पूरी उसकी तफसील बनती है जो दर्जा ब दर्जा बनते हैं कि जरूरियात दीन है और उसके बाद जरूरियात अहले सुन्नत है। जरूरियात दीन में तो जैसे अल्लाह का एक होना, खुदा का माबूद होना और नबियों पर ईमान और क़यामत पर ईमान, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खातमुन नबीयीन होना, आखिरी नबी होना, ये सब ज़रूरियात दीन में से हैं। इससे आगे भी ज़रूरियात अहले सुन्नत हैं कि उनका दर्जा पहले से कम होता है लेकिन उनका इनकार गुमराही होता है। उसमें जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला, तो आपका वसीला जो है ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है। अच्छा इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को गैब पर इत्तला है, गैब की खबरें हैं, तो इसका कोई दर्जा तो ज़रूरियात दीन में से है लेकिन कसीर उलूम गैबिया आपको हासिल हैं, ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है। इसी तरह अजाब कब्र, ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है। इसी तरह शफाअत, ये ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है। और अल्लाह ताला का दीदार मुसलमानों को क़यामत के दिन होगा, जन्नत में होगा, یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. تو یہ ایک پھر بہت لمبی فہرست ہے, یعنی کہ یہ ایک دو عقیدے نہیں ہیں, یوں کہہ لیں کہ یہ شاید جو ہے نا یہ کوئی 100 یا اس سے بھی کم زیادہ عقیدے ہوں گے جو سارے کے سارے ضروریات اہل سنت میں آتے ہیں.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھنے کی جو فضیلت ہے کہ جنت کی بشارت ہے, تو یہ فرض کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا مکمل نماز ہونے کے بعد پڑھنی چاہیے؟
آیت الکرسی مختصر ہے, وہ فرض کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, لہذا فرض کے فوراً بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر پوری نماز کے بعد پڑھیں جیسے مغرب عشاء ہے اور ساری نماز مکمل کر کے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کلمہ توحید ہے, یہ جو چوتھے کلمے کے کافی سارے الفاظ ہیں, یہ اگر 10 مرتبہ فرضوں کے بعد پڑھ لیے جائیں تو اس سے جو سنتیں فوری ادا کرنے کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو اب 10 مرتبہ وہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اب یہ اتنا کلمہ اگر 10 مرتبہ پڑھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کا جو ایک وہ بنتا ہے, جو اس کا یعنی کہ جتنا بڑا وہ بن جائے گا, تو آیت الکرسی تو اس کی بنسبت بہت چھوٹی ہے. تو لہذا آیت الکرسی جو ہے وہ فرضوں کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آخر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے.
محمد فرحان فیاض بھائی ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ جائے نماز پر مختلف قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں, شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو کیا اس سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
اس میں حکم شریعت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شے کہ جس سے نمازی کے خشوع و خضوع میں اس کی توجہ میں فرق آتا ہو ایسی شے نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کسی کے مصلے پہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے لیکن وہ ایسی ہے کہ نمازی کی توجہ میں خلل نہیں آتا, تو پھر تو اس چیز کے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر ایسی ہے کہ اس کی توجہ بٹتی ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو پھر یہ مکروہ ہے, تو پھر چاہیے کہ اسے بدل دیا جائے اور اس کی جگہ ویسا ہی مصلی ہو کہ جس کی وجہ سے خلل نہ آئے. اچھا پھر اس میں آگے دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سینسیٹیو زیادہ ہوتا ہے, یعنی وہ باریکیوں میں اتنا زیادہ توجہ کرتا ہے کہ اس کی توجہ خراب ہوتی ہوتی ہے, تو اب یہ ممکن ہے کہ اس کے حق میں یہ ہو کہ یہ مصلی بدل دے. دوسرا وہ ہے کہ جو نماز شروع کرتا ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا اور بس اپنی نماز پہ توجہ رکھتا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس پہ پڑتا رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شے جو ہے اس پر شروع کے اندر تو توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے, لیکن جس پر پڑھنے کا انسان عادی ہو جائے تو عادی ہونے کی وجہ سے اس کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ بنا ہوا, وہ نماز شروع کرتا ہے اور اس کی نماز چلتی رہتی. تو اب ایسی صورت کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسجدوں کے اندر جو مصلے ہوتے ہیں, جو کارپٹ بچھے ہوتے ہیں, تو عام طور پہ کچھ نہ کچھ ڈیزائن ان پر ہوتا ہے. ریڈ کلر کے جو ہے وہ کارپٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ مصلی محراب ٹائپ کا ڈیزائن ہوتا ہے. تو اب ڈیزائن تو موجود ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جسے توجہ خراب ہو. تو لہذا اب اس صورت میں اس پہ نماز پڑھنے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے, انہیں تبدیل کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں کوئی واقعتاً اس سے بھی بچنا چاہے اور یہ چاہے کہ نہیں جناب بالکل پوری پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل سادہ جو ہے وہ چادر کے اوپر نماز پڑھ لے یا خالی فرش کے اوپر نماز پڑھ لے اور فرش کے اوپر بھی کچھ نہ بنا ہوا ہو تو بہت اچھی بات ہے.
اشفاق بھائی ہیں پیرس فرانس سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ٹیلر کی دکان ہے اور تقریباً لوگ کپڑے دے کر جاتے ہیں اور اکثر لینا بھول جاتے ہیں اور 8 سال سے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, تو کیا اس کو صدقہ کر سکتا ہوں بیچ کر؟
ٹیلر کی دکان ہے اور لوگ اکثر بھول جاتے ہیں والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا.
لوگ بھول جاتے ہیں
تو اب ایسی صورت میں خیر اس کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے اور اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالا جائے. ایسی شے کا حکم جو ہے وہ ودیعت کا ہوتا ہے. ودیعت کا مطلب ہے امانت, اور جو شے امانت کی ہو تو اس کی حفاظت ہی کرنی ہوتی ہے. اب اس کا وہاں ملک کے اعتبار سے کوئی متبادل ہو سکتا ہو کسی جگہ رکھنے کا تو وہ کر لیا جائے, اور بظاہر تو یہ بڑی مشکل سی بات ہے کہ فرانس جیسے ملک میں اور پیرس جیسے شہر کے اندر جو ہے وہ ٹیلر کا معاملہ ایسا ہو کہ وہاں پر جو کپڑے سینے کے لیے دے کر جائے تو بعد میں اس کا ایڈریس نہ ہو, اس کا فون نمبر نہ ہو, اس کا کوئی اتہ پتہ نہ ہو, بظاہر کافی مشکل سی صورت ہے کہ ایسا ہوتا ہو, لیکن اگر ہوتا تو بہر حکم وہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ امانت کے حکم میں ہے, اس کی حفاظت کرنی پڑے گی.
ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن کے پاس گولڈ بھی موجود ہے, اسی طرح سلور چاندی بھی موجود ہے, لیکن کیش نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی, तो वो किस तरह अदा करें?
कुर्बानी तो उस पर वाजिब होगी और उसके लिए यही हुक्म होगा कि गोल्ड बेचे और या ये है कि किसी से कर्ज ले ले और कर्ज लेके कुर्बानी करे जब निसाब उसके पास मौजूद है। तो अब सिर्फ निसाब ना बेचना और या उसका उस वक्त ना बिकना ये गुजर नहीं होता। तो लिहाजा जब सोना मौजूद है, जब उसके पास असबाब मौजूद हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और वाजिब की सूरत में उसके लिए यही हुक्म होगा कि या तो बेच कर जो है वो कुर्बानी करे और या फिर जो है वो किसी से कर्ज लेके कुर्बानी करे। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो बहरहाल तर्के वाजिब भी होगा और उसके बाद फिर इस कुर्बानी की जो कजा है, कजा से मुराद ये है कि एक जिंदा बकरी जो है वो सदका करे या उसकी कीमत जो है वो सदका करे, फिर ये उसके ऊपर हुक्म बाकी रहेगा।
एक सवाल ये आया था कि जैसे कुर्बानी का सीजन है अभी आजकल चल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं वो कहते हैं कि ये जानवरों पर जुल्म हो रहा है, इससे बेहतर तो ये है कि इसकी रकम सदका कर दी जाए, तो इसके हवाले से आप क्या फरमाएं?
दीन इस्लाम के हुक्म के बारे में ये कहना कि ये जानवरों पर जुल्म है, ये तो है सीधा सीधा कुफ्र, ये कुफरिया जुमला है और जो कहे उस पर तौबा फर्ज है और नए सिरे से मुसलमान भी हो, निकाह है तो टूट गया, नए सिरे से निकाह भी करे और नए हक महर के साथ निकाह होगा। तो लिहाजा दीन इस्लाम के अहकाम को जुल्म कहना ये सरासर जो है ये कुफ्र है और मुसलमान से मुतसव्वर नहीं है कि वो ऐसी बात कहे, क्योंकि जानवरों का ज़बह और कुर्बानी जो है ये हर आसमानी दीन में है, ईसाइत में, यहूदियत में, ये तौरात में, इंजील में, बाइबल के अंदर इसकी पूरी तफसीलात मौजूद हैं और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर भी कुर्बानी का तस्किरा मौजूद है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन। तो ये मनसक, ये नुसुक, ये अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं और माज़ल्ला माज़ल्ला अल्लाह ताला जुल्म का हुक्म नहीं देता। तो जो कुर्बानी पर एतराज़ करता है वो खुदा के हुक्म पे एतराज़ करता है और जो जानवर के ज़बह को जुल्म कहता है वो माज़ल्ला खुदा के बारे में ये कहता है कि उसने जुल्म करने की इजाज़त दी और जुल्म करने का हुक्म दिया। तो ये बड़ा सख्त जुमला है और इसके ऊपर तौबा फ़र्ज है, खुफिया जुमला है, तो उसकी तौबा भी उसी एतबार से होगी। और बाकी ये है कि जानवर को ज़बह करना जुल्म जो है वो किस खुशी के अंदर हो गया? क्या दुनिया के अंदर जानवरों के अलावा जो दीगर जानदार हैं क्या उनके मरने की और उनको मारने की सूरत नहीं होती? ये जो स्प्रे करते फिरते हैं, मच्छर मारते, मक्खियां मारते, जरासीम मारते हैं, तो क्या ये जानदार नहीं होते? तो आखिर क्या वजह है कि ये वाले जानवर जो है ना इनको तो मारना जुल्म हो जाए और बाकी ये जो इतनी मखलूकत है कि जिनको स्प्रे करके मार देते हैं उनको मारना कुछ भी ना हो? तो ये ऐसी फजूल की बातें होती हैं और गैर माकूल बातें होती हैं, इनका कोई एतबार नहीं।
शाकिर हुसैन भाई कह रहे हैं कि कर्जदार के लिए कुर्बानी के क्या हुक्म है?
कर्जदार के लिए कुर्बानी के क्या हुक्म है, यानी कि मकरूज पर कुर्बानी की क्या सूरत है? देखिए, मकरूज का मसला ये है कि कुर्बानी का असल दारोमदार होता है साहिब निसाब होने पर। कोई शख्स मकरूज भी हो, साहिब निसाब भी हो, ये हो सकता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक जो है मकरूज भी होते हैं, किसी ने बैंक से कर्जा लिया होता है, किसी ने किसी से कर्जा लिया होता है, लेकिन फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं, साहिब निसाब भी होते हैं। इसी तरह आम जिंदगी के अंदर भी हो सकता है कि किसी ने किसी काम के लिए कर्जा भी लिया हुआ हो लेकिन उससे हटकर वो साहिब निसाब भी हो। तो लिहाजा मकरूज होना जो है ये तो कुर्बानी से माने नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पे इतना कर्जा है कि अगर वो कर्जा अदा करे तो उसके बाद निसाब की बकदर वो शय का मालिक नहीं रहता, रकम का या इसके अलावा किसी और चीज़ का, हाजत असलिया से शायद वो मालिक नहीं रहता। तो अब सूरत बदल गई, तो अब जब साहिब निसाब ही नहीं रहा तो अब इसके ऊपर कुर्बानी भी नहीं है, क्योंकि कुर्बानी साहिब निसाब पे होती है। तो ज्यादा मकरूज होना फी नफसी कोई शय नहीं है। हाँ, मकरूज के बाद ये देखा जाएगा कि साहिब निसाब है या नहीं। साहिब निसाब है तो कुर्बानी ज़रूरी है, साहिब निसाब नहीं है तो फिर कुर्बानी इसके ऊपर वाजिब नहीं होगी।
एक और सवाल आया था, वो ये था कि गुनाह कबीरा से कैसे बचा जाए?
गुनाह कबीरा से बचने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ होती है ये नीयत के मैंने इससे बचना है, और नीयत के बाद होती है हिम्मत कि फिर इसकी कोशिश भी करें। हिम्मत के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है मुजाहदा। मुजाहदे का मतलब ये होता है नफ्स की मनमानी के खिलाफ करना, नफ्स की मनमानी के खिलाफ करना। तो लिहाजा पहले तो ये नीयत हो कि मुझे गुनाह कबीरा से, बल्कि गुनाह सगीरा से बचना है। दूसरे नंबर पे उसके बाद फिर हिम्मत इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि जब गुनाह का मौका आएगा तो हाथ पांव छोड़ के बैठ गया और ठक करके गुनाह कर लिया, नहीं, फिर हिम्मत इस्तेमाल करनी पड़ती। अल्लाह ताला किसी को मजबूर करके गुनाह से नहीं बचाता, अल्लाह ताला ने बंदे को हिम्मत अता फरमाई हुई, अब वो हिम्मत इस्तेमाल करना उसका काम है। कुएं में पानी होता है, बंदा कुएं के पास जाता है, अल्लाह ताला ये नहीं करता कि कुएं का पानी उबल के उसके सामने आ जाए। हाँ, अल्लाह ताला ने पानी पैदा फरमा दी, एक कुएं के अंदर वो जमा भी हो गया, वहां पर रस्सी का इंतजाम भी हो गया। अब रस्सी और डोल जो है ये तो खुद ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बंदे ने खाना भी खाना होता है तो खाना सामने रखे तो खाना उड़ के मुंह में नहीं जाता, हाथ पांव हिलाने ही पड़ते हैं, हाथ हिलाकर ही खाना खाया जाता है। तो जब दुनिया जहान के हर काम में बंदे की अपनी कोशिश और अपनी हिम्मत ये इस्तेमाल होना जरूरी है, यही मामला गुनाहों का होता है। हाँ, इसके साथ कुछ इजाफी चीजें होती हैं, वो ये है कि गुनाह की जो वईदे हैं उन्हें पढ़े, उन्हें याद रखे, अल्लाह के अजाब को याद करे, जहन्नम के अजाब का तसव्वुर करे, अपनी मौत का तसव्वुर करे, मौत के बाद की बेबसी को सोचे, कब्र के अंदर जो तन्हाई और वहशत और सवालात और सजा होगी उसे याद करे, फिर इसके साथ बुरों की सोहबत से बचे, इसके साथ फिर नेकों की सोहबत में बैठे, नेक सोहबत से जो दिल की सख्ती है ये दूर होती है, दिल में नरमी पैदा होती है, दिल नेकी की तरफ माइल होता है, उसके साथ जब ये सारी जो दीगर चीज़ें हैं ये करता है, फिर उसके साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं अब उसके बाद बंदे की हिम्मत का मामला है। फिर वो जब हिम्मत इस्तेमाल करता है तो अब खुदा की तरफ से उसकी मदद होती है और बंदा गुनाह से बच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी जो है वो दो चार का पहाड़ा पढ़ ले और पहाड़ा पढ़ने के बाद वो गुनाह करने पर काबिल ही ना रहे और गुनाह उसे सरजद ही ना हो और गुनाह उसके सामने ना आए, ऐसा दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इल्म का मुझको शौक था कर खुदा, इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा, इल्म का मुझको शौक था कर खुदा।